कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की तो आज के इस नरसिंह जयंती के दिन में 13 मई को आप सबका स्वागत है संध्या जागृति कार्यक्रम में। आज बहुत ही पवित्र दिन है और एक भक्त जो अपने भक्ति के मार्ग में अपने भक्ति की सुरक्षा चाहता है उसके लिए नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारे लोभ होते हैं, काम वासना होती है, क्रोध होता है, लोभ होता है, द्वेष, मत्सर, मद मोह, ये हर प्रकार के प्रलोभन और बाधा भक्ति के जीवन में होती है और उससे भक्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए श्री नरसिंह भगवान का हमारे भक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो हमारी भक्ति की रक्षा करते हैं, न केवल हमारे शरीर के ऊपर आने वाले संकटों की रक्षा करते हैं लेकिन हमारे भक्ति लता बीज और भक्ति लता वेली, लता जो है भक्ति, उसकी भी रक्षा करते हैं। इसलिए श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के सभी मंदिरों में सवेरे शाम नरसिंह प्रार्थना जारी रखा है। अभी भी हर रोज मंगल आरती के बाद में नरसिंह आरती होती है, तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि सब भक्त लोग अपने अपने भक्ति की रक्षा चाहते हैं कि इस दुनिया के आंधी तूफान में कहीं मेरा भक्ति लता जो है वो नष्ट न हो जाए, तितर बितर न हो जाए। और प्रभुपाद जी की दया से इस्कॉन संस्था के अंदर ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव भगवान के, नरसिंह भगवान के बारे में भक्तों को आए हैं, बहुत ही आश्चर्यकारक, कैसे कैसे संकटों में जब भगवान के भक्तों ने नरसिंह भगवान को श्रद्धा से पुकारा बचाओ, तो कैसे तुरंत उन्होंने उनको बचाया। तो आज के दिन में श्री नरसिंह भगवान के चरित्र का श्रवण करना और वर्णन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से हमारे हृदय में जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो जन्म मृत्यु के लगातार चलने वाले श्रृंखला से निर्माण हुआ भय है और दुनिया के द्वारा मिलने वाले ताप है, वह सब श्री नरसिंह भगवान का आविर्भाव और प्रह्लाद महाराज का चरित्र सुनकर नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने ये वरदान दिया है, नरसिंह भगवान ने जब अपना हिरण्यकश्यप को मारने का कार्य समाप्त किया, प्रह्लाद महाराज की प्रार्थना सुनी, उसके बाद ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया कि ये प्रह्लाद पूरे विश्व में तुम एक श्रेष्ठ भक्त, शुद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे और जो भी तुम्हारी हमारी कहानी सुनेगा वो भव भय से मुक्त हो जाएगा, भव की पीड़ा जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस पीड़ा से वो मुक्त हो जाएगा, उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको निश्चय करना है कि हम लोग सीधे बैठेंगे और सोएंगे नहीं, क्योंकि जब जगेंगे तो सुनेंगे, जब सुनेंगे तो समझेंगे और समझेंगे तो ये जो वरदान दिया है उसका लाभ मिलेगा। सबसे बड़े कथा में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, क्योंकि जब हम जगे रहते हैं तो हमें कथा बड़ी अच्छी लगती है और जब नींद आती है तो पता चलता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए परीक्षित महाराज ने 7 दिन और 7 रात सुना, कोई लंच ब्रेक लिया नहीं, कोई ब्रेकफास्ट ब्रेक नहीं लिया, कोई रात को विश्राम नहीं किया, हाँ ना कोई लघु शंका और कोई निसर्ग का कोई वेग उनको कष्ट दिया, कुछ याद ही नहीं आया। इतने मग्न थे सुनने में कि उनका उत्साह सुनकर सुखदेव महाराज भी इतने उत्साहित थे बोलने के लिए, उनको बार बार अभिनंदन करते हैं, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन आपका, क्या आप इतने दिन के बाद भी और प्रश्न पूछ रहे हो, ये नहीं पूछ रहे हो कथा समाप्त कब होगी, प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण के बारे में और जिज्ञासा कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि आपकी जिज्ञासा इस समय इतने दिन के बाद भी देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और आपकी जो भक्ति के अंदर रुचि है उसको देखकर बड़ा प्रसन्नता हो रही है मुझे। तो सुखदेव जी ये भागवत का वर्णन कर रहे हैं, जिस भागवत के अंदर ये कथा आती है। ये कथा इतनी फेमस है कि श्रीमद् भागवत के अंदर कई कहानियां हैं, लेकिन आप में से मुझे एक भी व्यक्ति हाथ उठाकर बताइए कि आपके बचपन में आपने प्रहलाद की कहानी नहीं सुनी, ऐसा कोई इसके अंदर है कि आज तक आपने प्रहलाद की कहानी नहीं सुनी थी कभी, बचपन से आपने सुनते आए हैं। श्रीमद् भागवत की इतनी कहानियों के बीच में भी प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, सब हर एक बालक बालक को पता है। और दूसरी इसकी महिमा ऐसी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथपुरी में थे, श्री कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु, तब जगन्नाथपुरी में एक जगह है, इसका नाम है तोटा, यमेश्वर तोटा, यानी कि यमराज ने बसाया हुआ गार्डन, ऐसा एक जगह है, बहुत सुंदर जगह है। उसके अंदर टोटा गोपीनाथ का एक मंदिर है, टोटा गोपीनाथ मतलब वो गोपीनाथ जी जो मैदान में या बगीचे में या उपवन में निवास करते हैं, टोटा यानी उपवन यानी बगीचा, उसके अंदर निवास करने वाले ठाकुर जी का नाम है टोटा गोपीनाथ। और वो टोटा गोपीनाथ जो है वो ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए थे, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना आरंभ किया तो गोपीनाथ जी ऐसे प्रकट हो गए थे उनके सामने, वही टोटा गोपीनाथ जी वहाँ पर विराजमान है। और कालांतर के अनुसार श्री गदाधर पंडित जो राधा रानी के प्रत्यक्ष अवतार थे पुरुष के शरीर में, उनके जिम्मे वो सेवा आया। तो गदाधर पंडित जी गोपीनाथ जी की सेवा करने के बाद में दोपहर को उनके पास भोजन के उपरांत चैतन्य महाप्रभु आया करते थे, और उनको हर रोज वो प्रहलाद नरसिंह की कहानी सुनाते थे श्रीमद् भागवत के उपलक्ष में। ऐसे सुनाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित के मुख से कम 300-400 बार ये कथा सुनी, और वो हर बार ये कथा सुनते थे, पूरी होती थी तो बोलते थे दोबारा सुनाओ और दोबारा सुनाओ। और सुनते कैसे थे, चैतन्य महाप्रभु नृत्य क्या करते थे उसको सुनकर, डांसिंग इन एक्सटेसी, और सुनाओ एक ही कथा के बारे में बोल रहे हैं। गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी है, उनके अवतार है, वो प्रेम से इतनी कहानी सुनाते थे प्रहलाद महाराज की और नरसिंह भगवान की। तो आप समझ सकते हैं स्वयं भगवान जिनके द्वारा नरसिंह का अवतार होता है, जिनके द्वारा पहले विष्णु का विस्तार होता है, मतलब पहले भगवान बलराम जी, फिर संकर्षण, फिर नारायण, फिर महाविष्णु, और फिर गर्भोदकशायी विष्णु, और इन गर्भोदकशायी विष्णु से इस ब्रह्मांड में दशावतार होते हैं, उसमें का एक अवतार है नरसिंह भगवान। सबके स्रोत कृष्ण हैं, लेकिन वो कृष्ण स्वयं जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं तो अपने ही नरसिंह भगवान की लीला का बार 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 श्रवण करते हैं, क्योंकि वो जब बताना चाहते हैं कि ये कथा जो है इतनी शुद्धिकारी है, जीव के लिए आत्मशुद्धि के लिए इतनी आवश्यक है, इसलिए पूरे विश्व में नरसिंह भगवान के आविर्भाव का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मायापुर के अंदर आज के दिन में अभी 4:30 बजे ये कथा समाप्त होगी, तो आप सब लोग mayapur.tv इसको लॉग ऑन करना, तो आपको 2 घंटे का लाइव अभिषेक दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर कम से कम 3,000 लीटर चरणामृत का अभिषेक, मतलब चरणामृत तो बाद में बनेगा लेकिन उसका भगवान के ऊपर अभिषेक किया जाएगा। एक हंडा होता है ना हंडा, वो हंडा भर के आप डालेंगे तो भी पर्याप्त होगा, ऐसे शंख है उनके पास, ऐसा हंडा पूरा रिता करते हैं उसके अंदर, फिर भी वो शंख पूरा भर के ओवरफ्लो नहीं होता है, ऐसा पकड़ के भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं। 1,000 किलो वजन की पत्थर की नरसिंह भगवान की मूर्ति है, वो इतनी सुंदर मूर्ति, उग्र नरसिंह, हाँ जैसे वो खंभे से बाहर आए थे ना, तो उस क्षण में कैसे थे वो, पूरा क्रोध एकदम ठकाठक भरा था उनके अंदर, वो सबसे अधिक उत्कट, सबसे अधिक क्रोधित अवस्था में उग्र नरसिंह रूप में थे। वो उनके जो घुटने थे वो आधे मुड़े हुए, हाथ भी आधे मुड़े हुए और लपलपाते हुए उनके नाखून और जबान से निकलती हुई तलवार जैसी उनकी जिह्वा तड़पती हुई प्रकाशमान लाल रंग की भयावह, ऐसा सुंदर दर्शन है। स्थापत्य शास्त्र वाले लोग कहते थे कि ऐसी उग्र दर्शन की मूर्ति ब्रह्मा लोक तक किधर भी नहीं है। इस्कॉन के भक्त जब गए थे ऐसी मूर्ति हमारे लिए बनाओ और हमको ऐसा चाहिए, तो उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने कहा कि तो उग्र दर्शन की मूर्ति है ये मूर्ति, 14 भुवन में ब्रह्मा लोक से पाताल तक किधर भी नहीं है, इसलिए हम नहीं बना सकते उसको। लेकिन फिर उनके गुरु को प्रेरणा हुई भगवान की और उन्होंने अचानक हाँ कर दिया। कई बार ना करने के बाद में एक दिन अचानक हाँ कर दिया और तब जाकर वो दिव्य मूर्ति बनी। उसकी कहानी आपको बताएंगे एक दिन पूरी तरह से, कैसे मूर्ति बनी वो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नरसिंह भगवान का आविर्भाव हमारे लिए बहुत ही पुण्यकारी है और कल्याणकारी है। सब लोगों को भय है ना दुनिया में, सबसे पहले मृत्यु का भय है, दूसरा दर्द का, पीड़ा का, कष्ट का भय है, तीसरा कुछ चीज़ खोने का भय है कि हमारे पास ये है तो ये चला जाएगा, हाँ मेरी माँ अभी बूढ़ी हो गई तो मर जाएगी, या धन है तो कोई लूट लेगा, गर्मी हो रही तो बीमार पड़ जाऊँगा। हर प्रकार के भय हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के सम्मिलित है। वो सारे भयों से नरसिंह भगवान की स्मृति और नरसिंह भगवान के बारे में किया हुआ श्रवण हमको मुक्त कर सकता है। तो ऐसे ही सुखदेव जी परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे हैं, उसमें वो कथा चल रही है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को अग्र स्थान दिया गया, अग्र पूजन के रूप में अग्र पूजा की गई उनकी, और उसमें शिशुपाल ने भगवान के लिए बुरे बुरे शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भीमसेन गदा लेकर और अर्जुन धनुष लेकर खड़े हो गए, भगवान ने कहा बैठ जाओ मैं गिन रहा हूँ। फिर खड़े हो गए, बोला फिर गिन रहा हूँ आप चिंता मत करो बैठ जाओ। और जैसे 100 अपराध उनके हो गए, पहले भी बहुत किए थे ना, उसका भी गिनती था, सब रिकॉर्ड रखा था उनके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो भगवान ने जब गिने, जैसे ही 100 अपराध हुए तो भगवान ने खड़े होकर अपना चक्र को आह्वान किया और चक्र छोड़कर शिशुपाल का छिरच्छेद किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिशुपाल का वध हो गया सबके आंखों के सामने, कोई भी उस चक्र का तेज सहन नहीं कर पाया, उसका प्रकाश और तेज, उसका भय, एक क्षण में उन्होंने शिशुपाल का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। और अभी लपलपाता हुआ शिशुपाल गालियां बकता हुआ निश्चेष्ट हो गया, पड़ गया नीचे और चमत्कार हो गया, उसके शरीर से हृदय की ओर से एक ज्योति निकली और वो भगवान कृष्ण के शरीर में जाकर विलीन हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से प्रश्न किया, ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है। तो नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को इसकी कहानी बताना शुरू किया। हाँ चलो सीधे बैठो स्ट्रेट एकदम, हरे कृष्णा। हमको अपने गर्दन का भार भी सहन नहीं होता है तो उसको हाथ का सपोर्ट देते हैं, क्या करें, कलयुग का आयुष्य ऐसा है। तो नारद मुनि कहते हैं कि 2 द्वारपाल थे वैकुंठ के, जय और विजय, और उनको द्वारपाल के रूप में सेवा दे रहे थे वैकुंठ में, अंदर भगवान थे। तो उनको मिलने के लिए 4 कुमार आए, 4 कुमार यानी ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो, बड़े करोड़ों वर्ष के उम्र वाले थे वो, लेकिन वो अपने योग के बल से शरीर को उन्होंने 4 साल का बना के रखा था ताकि उस शरीर के अंदर कोई काम वासना सेक्स डिजायर उत्पन्न ना हो, इसलिए वो ऐसे ही 4 साल की उम्र के नग्न अवस्था में घूमते थे। वैकुंठ में विष्णु से मिलने को आए तो नग्न बालकों को देखकर जय वजय दोनों ने रोक लिया, बोले आपके लिए प्रवेश नहीं, बच्चों का खेल नहीं है वैकुंठ वगैरह। तो उनको पहचाना नहीं उन्होंने, तो जय विजय को 4 कुमारों ने शाप दिया, जाओ राक्षस बन जाओ पृथ्वी पर जाकर। पहले बोला पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा आपको 7 बार। तो उनको होश आया, अरे बाप रे ये तो बालक नहीं है, तो बहुत बड़े विद्वान और ऋषि है ये सब, हमने पहचाना नहीं उनको, इसलिए अपराध किया उनका। तो 7 बार तो बहुत होता है महाराज जी, कुछ डिस्काउंट दे दो। तो उन्होंने कहा 7 बार भक्त बन के अगर जाना नहीं है तो 3 बार राक्षस बन के जाना होगा। तो बोले भौतिक दुनिया में जितना कम से कम समय बिता है उतना अच्छा है। राक्षस का ही सही, लेकिन 3 बार ही काफी है हमारे लिए। देखो आप सोचो वैकुंठवासी क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हम लोग यहाँ आराम से जी रहे हैं अपनी जिंदगी, हाँ, और अगर और यहाँ पर मटेरियल प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रगति करेंगे और पैसा कमाएंगे और सम्मान बढ़ेगा हमारा और कीर्ति बढ़ेगी, हमारा पेपर पे नाम आएगा, मंत्री का सीट मिलेगा अभी मोदी गवर्नमेंट में, ऐसा सब हमारे मन में सपने आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग तथाकथित सो कॉल्ड आरामदेह जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ पर आना भी नहीं चाहते, डिस्काउंट चाहते हैं उसके अंदर आने का, अगर मिल शाप मिला तो फाइनली फिर चाहे हुआ कि 3 बार चले जाओ कोई बात नहीं, उसके बाद वापस लौट के आओगे अपने पोजिशन पे, हाँ जय विदय के रूप में वहाँ पर आ जाओगे। तो पहली बार जब अवतार हुआ इन दोनों का, तो कश्यप मुनि ये प्रजापति हैं बड़े, उनकी कई पत्नियां हैं, अदिति है, दीति है, दानु है, कद्रु है, विनीता है, ऐसे कई सारी उनकी पत्नियां हैं जिनके माध्यम से उन्होंने कई सारी योनियों का जन्म दिया है, सर्प योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि, राक्षस योनि, दानव योनि, असुर, सब प्रकार के लोगों को उन्होंने जन्म दिया है। तो दीति जो है वो संध्या के समय पर कश्यप मुनि को संबंध करने के लिए बहुत प्रवृत्त करती है। तो कहते हैं कि ये समय अच्छा नहीं है, संध्या के समय कभी भी पति पत्नी को एकत्र नहीं आना चाहिए बालक उत्पन्न करने के लिए, बहुत अपवित्र माना गया है। क्योंकि उस समय जब संधि काल होता है, दिन और रात का मिलन होता है, ना दिन है ना रात है, बीच का समय है, उस समय शिवजी सारे भूत प्रेत गणों को लेकर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको भी उन भूत प्रेत गणों को जीवन दान देना है ना। तो कोई ऐसे अभागे मनुष्य पति पत्नी है उस समय मिलन करते होंगे, तो उनके योनि के अंदर, गर्भ के अंदर वो भूत प्रेत योनि प्रवेश करते। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने में तो कुछ नियम है ही नहीं, कुत्ता बिल्ली जैसा संभोग करते सब लोग, लेकिन शास्त्र में मनुष्य के लिए बहुत नियम बताए गए हैं। 9 से 12 यही प्रहर बताया गया है पति पत्नी को मिलन होने का, तब अच्छी संतान उत्पन्न होती है, वो भी अमावस्या और ऐसे भरणी नक्षत्र भयंकर जो टाइम होता है वो दिन मना कर दिया गया है। कोई संतों का जन्मदिन है या कोई भगवान का आविर्भाव दिन है, ऐसे दिन संभोग नहीं करना चाहिए। एनीवे कश्यप मुनि कहते हैं अपने पत्नी को ये समय गलत है, अभी आप ये अपेक्षा मत करना, फिर भी वो उनको खींचकर प्रवृत्त करती है। तो कहते हैं कि अभी इससे जो संतति होगी ये बहुत भयंकर होगी, पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा, सब लोग त्राही त्राही मचाएंगे, रोएंगे पुकारेंगे भगवान को। तो ऐसे ही हुआ, सबसे पहले हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, बहुत भयंकर, बहुत चैप्टर दिया उसके अंदर पूरा भागवत के अंदर। एनीवेज भगवान ने ब्रह्मा जी के नाक से जन्म लिया वराह रूप में, वराह देव के रूप में, नाक से तो इतना बिंदु के रूप में निकले थे, लेकिन ऐसे पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया उन्होंने अपने साइज से। और फिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लात मारकर गर्भोदक सागर के नीचे फेंक दिया था उसको, दलदल के अंदर। वो पहले उन्होंने सूर मारा जमीन पानी के अंदर, गर्भोदक सागर के अंदर पृथ्वी को उठाया अपने 2 सिंगों के ऊपर, उसको कहते हैं टस्क, उसके ऊपर उठाया पृथ्वी को और जगह पे जाकर विस्थापित कर दिया। वो जिसको मैंने लात मारकर कक्षा से निकालकर जल के अंदर फेंक दिया, उसको उठाकर कक्षा में रखने की हिम्मत किसकी, ये देखकर हिरण्याक्ष बाहर आया। और फिर भगवान का और उनका भयंकर युद्ध हो गया और भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। बोलो वराह भगवान की जय हो। तो ऐसा ही एक दिन है हमारे कैलेंडर में, वराह द्वादशी, जिस दिन ये भगवान वराह ने जन्म लेकर हिरण्याक्ष का ऑन द स्पॉट वध कर दिया था। तो उस समय दीति को 2 पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु नंबर टू, हिरण्याक्ष नंबर वन, दोनों लेकिन पाप करने में इक्वल थे, खाली जन्म में वन और टू थे, लेकिन पाप इतना इतना भयंकर था। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही सुना कि मेरे बड़े भाई का भगवान ने विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध कर दिया, तब से वो विष्णु को अपना शत्रु मान के बैठा कि ये मेरा शत्रु है, इसका मैं वध करूँगा। उनकी पत्नियों की सांत्वना करता है और उसके बाद में तपस्या करने चला जाता है स्वर्ग लोक के 1000 साल, मतलब वहाँ यहाँ का 6 महीना, वहाँ का 1 दिन होता है, ऐसे 30 दिन 1 महीना होता है, ऐसे 12 महीने 1 साल होता है, ऐसे 1000 साल तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की। आज तक के इतिहास में देवताओं के, दानवों के या मनुष्य के इतिहास में कहीं भी इतनी तपस्या किसने नहीं की है। भक्तों के अंदर नंबर वन होता है कौन? ध्रुव महाराज। लेकिन ऐसा होता है ना, वो 12th के एग्जाम में लड़कों में से ये प्रथम, लड़कियों में से वो प्रथम, और मार्क में अंतर होता है बीच में। वैसे ही क्या कहा था मैंने, ध्रुव महाराज सब भक्तों के बीच में तपस्या में नंबर वन में है, इतना तपस्या कठोर किसने नहीं किया है। लेकिन देवता और भक्त और दानव और राक्षस, इन सबके बीच में सर्वश्रेष्ठ तपस्या का सम्मान पहुंचता है श्रीमान हिरण्यकश्यपु को। उसने अपने दाहिने पैर के एक बड़े अंगूठे पर खड़ा रहकर दोनों हाथ ऊपर, एक पैर फोल्ड किया हुआ, एक पैर के केवल अंगूठा जमीन पर, बाकी सब ऊपर, ऐसा हाथ ऊपर करके जल भोजन कुछ भी न करते हुए 1000 साल वो खड़ा रहा ध्यान के अंदर। उसके शरीर के अंदर पूरा चींटियों का हुआ ना वारुल, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहते हैं उसको, चींटियों का घर बन गया पूरा, कि सारा मांस शरीर का पूरा चींटियों ने खा लिया, केवल हड्डियों के अंदर प्राण घूम रहे थे उसके, फिर भी तपस्या को नहीं छोड़ा। आपको बोलेंगे हरे कृष्णा और एक चींटी काट दिया तो आपका पूरा ध्यान भंग हो जाएगा, चींटी खटमल, इधर से कॉकरोच आया, इधर से कुछ हो गया तो तुरंत अपना, हाँ अभी आपको नींद आती होगी तो सोचना कि कॉकरोच आपके शरीर पर गिर रहा है, सब नींद भग जाएगी आपको, कॉकरोच या चिपकली ऐसे आपके बदन पर गिर रही है, ये खाली सोचना बस, और सोचने से आपका नींद पूरा हरी बोल हो जाएगा। तो ऐसी कड़ी तपस्या की उसने, 1000 साल के अंत में उसके सर से अग्नि निकली, इतनी भयंकर तपस्या, और वो जो अग्नि निकली वो ब्रह्मा लोक को आँच पहुंची उसकी। ब्रह्मा जी को ऐसे अभी आया ना 40-45 टेम्परेचर हो रहा है तो कैसे हम जल रहे हैं, हाँ सऊदी अरब में 55 होता है, 55 डिग्री सेल्सियस का अनुभव मैंने किया है जब मैं सऊदी अरब में था। पूरे कपड़े पहने हुए, जूता पहन के उस पर, सॉक्स के ऊपर जूता पहना हुआ है, फिर भी जूते के अंदर, सॉक्स के अंदर जो मेरे पैर की चमड़ी है वो भी जल रही है, ऐसे लगता है कोई माचिस की काड़ी लगा रहा है उसको, इतनी गर्मी, तो 55 के बाद। लेकिन हिरण्यकश्यपु के सर से निकला वो अग्नि जो है वो 14 भुवन, मतलब ब्रह्मा लोक तक उसकी आँच पहुंची। ब्रह्मा लोगों को वहां पर कैसा ना एकदम बहुत बढ़िया टेम्परेचर होता है, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, ठंडी हवा चलती है, बाष्पयुक्त सुगंधयुक्त ऐसी हवा चलती है, बहुत सुंदर वातावरण होता है। उसमें इतनी गर्मी हो गई कि ब्रह्मा जी परेशान हो गए, तो ब्रह्मा जी को उतरना पड़ा। अरे इतना भयंकर, देवता लोग भी त्रस्त हो गए, त्राही त्राही करके ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं आप, मुझे को इतनी तपस्या कर रहा है, आपको भी पदभ्रष्ट कर देगा वो, सब दुनिया को संकट उत्पन्न कर रहा है, सब कुछ नष्ट कर देगा, धर्म तो नाश कर ही देगा लेकिन बाकी सब कुछ जो सुविधा है वो भी खत्म कर देगा, अभी कुछ करो आप। ब्रह्मा जी को वहां पर आके दर्शन देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको दुनिया की होने वाली स्थिति को देखते हुए आना पड़ा। बोला हिरण्यकश्यपु क्या चाहते हो तुम, इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी को बड़ा पसंद हो गया, वाह जिसका पर्पज था वो फुलफिल हो गया। तो क्या मांगा उसने, एक मर्सिडीज गाड़ी दो, 1000, जय हो, सब लोग मोबाइल बंद कर दो, हरे कृष्णा। तो उन्होंने जो मांग हर राक्षस करता है अज्ञान के वश, क्या मांग किया कि मुझे अमर बना दो। राक्षस लोगों का एक गड़बड़ है, हाँ उनको पता नहीं है कि दुनिया में रहना कितना मुश्किल है, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा और गर्मी सर्दी का ताप और दूसरों से मिला हुआ ताप और अपने से प्राप्त हुआ ताप, ऐसे कितने बड़े बड़े कष्ट है यहाँ पर। ये राक्षस लोगों को समझ में नहीं आता है, वो सब लोगों को यहीं पर जीना है परमानेंटली। मरते मरते भी बोलेंगे कि हमको और थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो, एप्लीकेशन दे रहे। तो ऐसे वो जानते नहीं हुए हर बार, रावण ने भी यही ब्रह्मा जी को पूछा था, शिव जी से भी ये पूछा था कि हमें अमर कर दो। तो ब्रह्मा ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ, मेरा भी जन्म का तिथि है और मेरा भी जाने का तिथि है, फिक्स है, यहाँ पर कोई परमानेंट रह नहीं सकता। तो उसको लगा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। बाय द वे ब्रह्मा जी ने जब देखा ना तो क्या देखा कि सर सर पंजर है पूरा कंप्लीट, ओनली बोन्स, नो फ्लैश, नो स्किन, नथिंग, खाली हड्डी का पूरा ऐसा पंजर है पूरा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पानी लिया और उसको फेंका तो पूरा शरीर एकदम सुंदर शरीर प्राप्त हो गया उसको दोबारा एक बार। फिर वंदन करके उसने ये मांग किया, फिर सोच के मांग किया कि कैसे कैसे मृत्यु हो सकती है। तो बोला जल में हो सकती है, आकाश में हो सकती है और पृथ्वी पर हो सकती है। बोले ये तीनों पर मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। और कैसे हो सकती है? शस्त्र से हो सकती है, अस्त्र से हो सकती है। शस्त्र मतलब क्या? फिजिकल वेपन, मतलब चाकू है, तलवार है, भाला है, गदा है, धनुष बाण है, इससे। और अस्त्र मतलब जो मंत्र बोलने के बाद में निकलता है, वो वायव्य अस्त्र, अग्नेय अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, वो दिव्य अस्त्र होते हैं। तो दिव्य अस्त्र और शस्त्र, इसमें से किसी से बद नहीं होना चाहिए। फिर और कैसे हो सकता है? मनुष्य के द्वारा हो सकता है, प्राणी के द्वारा, पंछी के द्वारा और कीचक के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किए गए किसी भी योनि के द्वारा, किसी भी जीव के द्वारा मेरा वध नहीं होना चाहिए। कितना बुद्धिमान है ना आदमी, बहुत सोच समझ के काम करता है। ब्रह्मा के द्वारा 84 लाख स्पीशीज का निर्माण हो गया है, 84 लक्ष शरीरों को उन्होंने बनाया है, अलग अलग वैरायटी वाला। एक एक शरीर में कितने लाखों करोड़ों अब्जो जीव जीते हैं, एक ही जैसे कि कीटक है जो कॉकरोच है, इसमें भी कितने प्रकार के कॉकरोच, मनुष्य में कितने प्रकार के मनुष्य, देवताओं में कितने प्रकार के देवता, जनसंख्या आप गिन सकते हैं क्या? अम्बीबा कितने होंगे दुनिया में, बैक्टीरिया कितने होंगे, वायरस कितने होंगे, जाति मालूम है आपको, लेकिन उसमें कितने जीव जी रहे हैं कुछ पता नहीं किसी को। ऐसे ब्रह्मा ने निर्माण किए हुए, आपने निर्माण किए हुए किसी भी योनि के द्वारा मेरा वध नहीं होना चाहिए। फिर कहता है घर के अंदर घर के बाहर भी नहीं होना चाहिए। उसको लगा कि अभी ऐसा सब फुल प्रूफ वरदान ले लिया है, अभी मृत्यु तो खत्म हो गया, अभी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। समझो आपको ऐसा वरदान मिलता आप क्या करोगे, तो सोचा कभी आपने कैसा वरदान आपको मिल गया? मतलब 99.99% मृत्यु आपका हो ही नहीं सकता है, आपको जीना ही जीना है। तो क्या प्लानिंग करेंगे आप, क्या करना चाहेंगे? सोचा ही नहीं आपने कभी ऐसा, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। रिटायरमेंट हो गया तो आपके पास 10 साल बचे हैं, उसके बाद में तो बुलावा आएगा ही सबका, है ना? या जन्म भी ले लिया आप लोग, बहुत जिंदगी पड़ी है, फिर भी 50-60-70 साल के ऊपर आज आगे कोई पहुंचता नहीं है, वो सेंचुरी मारने का जमाना गया अभी। सेंचुरी मारने पर पेपर में फोटो आता है ऐसे, आंख में दिखता नहीं है, कान में सुनता नहीं है, सब चमड़ी यहाँ थी वो भी इधर आ गई है, ऐसे लटक रही है, और उसका फोटो आता है 101 साल हार पहन के, और वो हैप्पी बर्थडे भी सुनाने पड़ता है। और जो हैप्पी बर्थडे करने को आए वो दिखाई भी नहीं पड़ते। तो वो सेंचुरी मारने का जमाना गया अभी, हाफ सेंचुरी मारा तो बहुत हो गया। मेरे बचपन की बात करो, मेरे बचपन के अंदर मेरे नेबर को 24 इयर्स न्यूली मैरिड बॉय को हार्ट अटैक आके ऑन द स्पॉट मर गया। जस्ट मैरिड 24 इयर्स यंग मैन व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, 10 साल का था मैं तभी, मेरे आंखों के सामने देखा मैं। और 15 साल हो गए तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं, 25 साल हो गए तो फिर ज़्यादा ही सफ़ेद हो जाते हैं, फिर कलर की इंडस्ट्री आई। कहने का तात्पर्य यह है कि आयु कुछ बचती नहीं हमारे पास, लेकिन वो सत्ययुग का जीव था, उसके पास तो 1 लाख साल की आयु थी और उसमें भी उसको परमानेंट रहने का प्लान था। तो ये वरदान प्राप्त करने के बाद में उसके अंदर इतना अहंकार आया कि उसने सारे देवताओं को दबोच लिया, सबको अपने कब्जे में कर लिया, सबका राज्य 14 भुवन। अभी आप बोलेंगे कोई अमीर आदमी का नाम लेके बोलेंगे आधी बॉम्बे उसकी है, तो आप बोलेंगे वहाँ पर कितना अमीर है वो, माइकल जैक्सन का एक पूरा बेट है, टापू पूरा उसका है, तो आप बोलेंगे कितना अमीर है वो। और कोई बोलेगा कि पूरी बॉम्बे उसकी है, तो आप तो दंगे रह जाएंगे, बाप रे। लेकिन हिरण्यकशिपु ने 14 लोक अपने बना लिए, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स, सब पर उसका राज। और जहां जहां कोई देवता बैठा सब लोग भाग गए अपने आसन छोड़ के, कोई गुफा में छुप गए, कोई किधर गायब हो गए पत्नियों को लेकर। और बड़े बड़े देवताओं को पकड़कर उसने क्या किया पता है, अपने घर का नौकर बना दिया, पर्सनल सर्वेंट। इंद्र आदि मेन मेन देवता जो है ना, इंद्र जो अपना बहुत बड़ा उनका नाम है, मतलब देखो चंद्र है, सूर्य है, इंद्र है, वरुण है, वायु है, हाँ ये मेन मेन देवता है 33 करोड़ में। वो सब लोगों को उनने चुन चुन कर मेन मेन लोगों को घर में पानी भरने को, और है इधर आ जा पानी दे, पानी देने के लिए, पानी भरने के लिए, लादी पहुँचने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई का, एकदम मिनियल वर्क है, ऐसा बड़ा काम नहीं, नॉट लाइक अ चीफ शेफ कि भाई मेन कुक है वो घर का, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा गिरा हुआ काम, जानबूझ के उनको मान हानि करने के लिए, बार बार बुला के कष्ट देना उनको, ऐसे कर दिया। सब देवता लोग परेशान हो गए थे, इतना बल था उसके अंदर, इतनी देखो अभी। और ऊपर से और भी एक वरदान मांगना मैं बताना भूल गया कि जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी कलाएं हैं, वो सब मुझे चाहिए। अभी 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं, महिमा एकदम बड़ा हो जाना, लघिमा छोटा हो जाना, अनिमा मतलब एकदम इतना हल्का हो जाना कि वजन ही नहीं कुछ, वेटलेस, हाँ प्राप्ति सिद्धि, कुछ सोचेगा तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा, मुझे एक प्लैनेट चाहिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ऐसी कई प्रकार की सिद्धियां, अदृश्य होना, आकाश में उड़ना, भयंकर आकार ग्रहण करना, रूप बदलना, ऐसे प्रकार की अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। वो सब सिद्धियां ब्रह्मा जी ने उसको दे दी, तपस्या इतनी भयंकर की थी क्या करेगा वो, क्योंकि अगर नहीं देंगे उनको मांगा हुआ तो और तपस्या को बैठेगा, फिर ब्रह्मा जी को अपना पद खाली करना पड़ेगा, फिर वो ब्रह्मा बनेगा, फिर खुद को ही खुद वरदान देगा। ये समझ कर वो आए थे दर्शन देने के लिए। तो सारी सिद्धियां, सारा बल, सारी शक्ति, सारा ऐश्वर्य, शस्त्र अस्त्र दिव्यास्त्र सब प्राप्त हो गए थे उसको, उसको परास्त करना तो था ही नहीं कोई, सब परेशान हो गए क्या करेंगे अभी इसको। सब देवताओं को वहां बना के रखा है, और एक नया नियम निकाला, धर्म की व्याख्या बदली कर देंगे, अभी हम धर्म खुद लिखेंगे, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो उसने कहा धर्मम तो साक्षात हिरण्यकशिपु प्रणीतम, मैं जो कहूंगा वही धर्म होगा, सब लोग मेरा नाम लेंगे, यज्ञ करना ही है तो मेरे लिए यज्ञ करेंगे, मुझे अर्पण करने के लिए करेंगे, नहीं तो यज्ञ विष्णु के लिए करना बंद, सब यज्ञ याग सब बंद हो जाएंगे, मेरा ही नाम पुकारेंगे, मेरा ही जप करेंगे, ऐसा फतवा निकाला उसने। कितना डेंजरस चीज है ना ये, ऐसा कोई राजा आपके ऊपर आएगा तो बाप रे जीवन बर्बाद हो जाएगा हमारा। वो इतना शक्तिशाली था, उसके अंदर इतनी पावर थी, और देवताओं पर आक्रमण किया और सब देवताओं को परास्त किया। उसके बाद वो वापस तपस्या के लिए गया, तब देवताओं ने चांस लेकर असुरों पर हमला किया, और उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी गर्भवती थी, तो उसको भी कैप्चर कर लिया उन्होंने युद्धबंदी के रूप में, उसका नाम था कयाधु, और प्रेग्नेंट थी, और उसको वो इंद्र जो है अपने नेतृत्व में उसको पकड़कर ले जा रहे थे कि इसको रखेंगे, जब ये जन्म देगी बालक को तो वो हिरण्यकशिपु का बालक है, इसलिए उसको जन्म होते ही मार डालेंगे, ये नहीं सोचा कि उसका गर्भपात करेंगे। अभी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनको कयादु को मारना मुमकिन था या कयादु को गर्भपात भी कराना मुमकिन था, राजवैद्य को बुलाकर, अश्विनी कुमारों को बुलाकर, दवाई देकर, लेकिन गर्भपात करना कितना भयंकर पाप है ये देवता भी और राक्षस भी और असुर भी सब जानते थे, स्त्री का वध करना कितना पाप है ये भी जानते थे, वो गर्भवती स्त्री को मारना कितना भयंकर पाप है ये भी जानते थे, और गर्भपात करना खाली गर्भ को मारना वो भी कितना भयंकर पाप है ये सब जानते थे। इसलिए उन्होंने कयादु को कैप्चर किया, लेकिन बोले हम वेट करेंगे, उसको रखेंगे अपने पास नजर कैद में, जब बालक का जन्म होगा तब तो मारेंगे उसको, क्योंकि राक्षस का बालक है। तब नारद मुनि वहां पर आए, और नारद मुनि ने उनको रोका देवताओं को, क्यों लेके जा रहे हो उस औरत को, बोले इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का बालक है, राक्षस है वो। नारद मुनि कहते हैं कि ये राक्षस नहीं है, ये भगवान का परम भक्त है जो इसके गर्भ में आकर बैठा हुआ है। वो तुरंत मान गए, बोल सकते ना नो 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 आई डोंट बिलीव, ये इम्पॉसिबल है, हम नहीं आपकी बात मानेंगे, हम उसको पकड़ के लेके जाएंगे। लेकिन साधुओं का आदर करना देवताओं का धर्म है, साधुओं के शब्द पर श्रद्धा रखना ये भी देवताओं का धर्म है। और नारद मुनि तो त्रिलोक के संत हैं, सब जगह जाते हैं वो ना उपदेश करने के लिए, सब लोग उनका वंदन करते हैं, चरण धोते हैं उनके, ब्रह्मा जी के अनौरस पुत्र हैं वो। नारद मुनि की बात सुनकर उन्होंने उसको रिहा कर दिया। नारद मुनि ने भयभीत कयादु को देखा तो उसने कहा कि मेरे आश्रम में आ जाओ, और वो आश्रम जो है वो गोवर्धन के पास में है, नारद कुंड के पास, वहां पर लेके आए उसको। और वहां पर राक्षस की पत्नी को बोध देने के लिए भागवत सुनाया उसको। तो कयादु जो थी उसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहा करता था कि पति तपस्या में गया हुआ है, देवता लोगों ने आक्रमण करके हमें कैप्चर करने का प्रयास किया था, बच गई मैं साधु की कृपा से, लेकिन राक्षसों का अभी सम्मान और शक्ति कम हो गई है, देवता लोग हावी हो गए हैं, मेरा पत्नी अभी पति जंगल में गया हुआ है। तो उसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहा करता था, तो साधु की जो उपदेश की वाणी थी वो ठीक से सुन नहीं पाती थी हमेशा। लेकिन जो उसके गर्भ में बालक था प्रहलाद, उसने पूरा भागवत जो है बड़ा ध्यान से सुना था, इसलिए आगे जाकर उसके क्लासमेट उसको पूछते हैं कि यहाँ पर तो कोई भक्त तो कोई है नहीं, संत वैष्णव कोई आता नहीं यहाँ पर, आप ये कहाँ सीखा सब कुछ? तो उन्होंने कहा माता के गर्भ में जब था तो मेरे गुरु महाराज नारद मुनि, उनकी मुझ पर कृपा हुई थी, और तब जो भी मैंने सुना था उसी के आधार पर मेरी जिंदगी चल रही है। देखो कितना सुनना इम्पोर्टेंट है। हाँ, गर्भ की अवस्था में श्रवण किया था उसने, इसका मतलब गर्भ की अवस्था में हम लोग सुन सकते हैं, अभिमन्यु की कथा से हम समझ सकते हैं, इसकी कथा से समझ सकते हैं। सुखदेव जी को भी वासुदेव ने माता के गर्भ में जब थे तभी व्यास भागवतम सुनाया था, जो भागवत के प्रमुख कथाकार हैं सुखदेव जी, व्यासदेव के पुत्र हैं, वो भी गर्भावस्था में ही भागवत सुने थे। इसलिए कहा गया कि गर्भावस्था में अपने बालक को हमेशा कथा के वातावरण में रखना चाहिए, हमेशा ऑल प्रेग्नेंट लेडीज शुड बी कॉन्स्टेंटली हियरिंग कृष्ण कथा हरि कथा, ताकि बालक के ऊपर परमानेंट संस्कार हो जाते हैं। वहाँ पर कोई आर्गुमेंट डिस्कशन ऐसा नहीं होता है ना, केवल वन वे ट्रैफिक होता है, सब कुछ एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है। बड़ी भाग्य की अवस्था है गर्भावस्था। खैर, तो प्रहलाद जी ने गर्भ में सब सुन लिया पूरा ज्ञान, यथावकाश हिरण्यकशिपु आया। अच्छा, बाय द वे उसने बहुत साल तपस्या किया, तो कयादु के अंदर इतनी शक्ति थी, उसने अपने बालक को जन्म होने नहीं दिया। हमारे यहाँ पर 9 महीने के बाद तो या तो सिजेरियन या तो डेथ या तो डिलीवरी होना ही पड़ता है, आपके हाथ में नहीं है ये कि मैं अभी 10 महीने 15 दिन तक उसको रखूंगी। कोई लड़के कहे नहीं नहीं मैं 4 महीने 3 दिन के अंदर उसको भिजवा दूंगी अपने बाहर से, कोई अपने हाथ में नहीं। लेकिन कयादु के अंदर वो शक्ति थी, उसने अपने बालक को गर्भ में कई साल तक रखा, जितने साल वो लौट के नहीं आया, जब लौट के आया तो फिर जब पति ने लेके गए उसको तब डिलीवरी किया उसने अपना, अतः प्रहलाद का जन्म हुआ। थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको भेज दिया गया गुरुकुल के अंदर, और गुरुकुल के अंदर मैं बहुत लंबी कहानी है, एक तो 7वां स्कंद पूरा इसमें केवल प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कथा में भरा हुआ है, एक स्कंद को बताने जाएंगे तो कई महीने लगेंगे पूरा विस्तार में, संक्षेप में कह रहा हूँ। तो थोड़े बड़े हो गए, बड़े सुंदर बालक थे प्रहलाद जी, सद्गुण संपन्न थे, और शंड और अमरख शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं राक्षसों के, उनके पुत्र थे दो, उनको गुरुकुल में भेज दिया उनके, और शिक्षा आरंभ किया। कुछ दिन बाद में बोलते ना, एक सेमेस्टर पूरा हुआ, दो पूरा हुआ, तो पिता ने बड़े प्रेम से बुलाया, क्या सीखा बेटा बताओ? तो माता ने उनको भेजा, गुरु जी भी आए बड़े प्रेम से, बोले अभी हमारा गौरव होगा कि हमने इसको पढ़ाया है, ये तो राजा का पुत्र है, इसके टीचर हम बने हैं, तो कितने फॉर्चुनेट हैं हम लोग। तो बोलते बेटा क्या सीखा आपने? तो कहते तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम कि जीवन तुम्हारा व्यर्थ है, तुमको वन में जाना चाहिए, ये राज्य का भोग नहीं करना चाहिए, इतना सारा तुम ऐश्वर्य भोगते हो भी दुखी रहते हो, इसका कारण यह है कि आपको पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं, पहले कहते नते विदुम स्वार्थम गतिम ही विष्णु, कि आपको जीवन का उद्देश्य क्या है पता ही नहीं है। नते विदु स्वार्थ, आपका स्वार्थ क्या है आपको पता नहीं है कि वो विष्णु है। विष्णु तो मेरा शत्रु है, उसका नाम मत लो। तो वो गुस्से से देखते शंडा उमर की ओर, तुमने इसको ये सिखाया? मैंने नॉट अस, हमने तो नहीं सिखाया इसको। बोले कोई बात नहीं महाराज, ये तो बालक है, पता नहीं कहाँ से सीखा होगा। हम जाके उसको पूरा अभी ब्रेन वॉश करके दोबारा लेके आते, लेके गए। सेकंड सेशन सेमेस्टर हुआ और तभी उनको अच्छा राक्षस बनने के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी शिक्षा दी उनको, हाउ टू हेट, हाउ टू लव, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमी एंड फ्रेंड, कौन मित्र है कौन शत्रु है, इसमें भेदभाव कैसे करना है, ऐसे अपना कौन पराया कौन, कैसे अलग रखना है उसको, राक्षस कैसे बनना है बेस्ट, ये सब उसको स्पेशल क्लासेस दिए उन्होंने। और दूसरी बार जब पिता को मिलने का समय आया तो माता ने अच्छी तरह उसको सजा धजा कर भेजा, ताकि बच्चा अगर बहुत प्यारा श्रृंगार करके आए तो इतना ज़्यादा क्रोध नहीं आएगा उसको देखकर। वापस गया पिताजी के बाद, दंडवत किया, प्रणाम किया और गोद में बिठाया, बेटा तुमने क्या सीखा? तो कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम, ये नवदा भक्ति यही जीवन का उद्देश्य है, और विष्णु के चरणों की भक्ति प्राप्त करना यही जीवन का उद्देश्य है, बाकी सब कुछ बेकार है। तो इतना क्रोध आया, वापस वो चंडामर का कांपने लगे उस समय देख के, इसकी नजर को देखकर। इतना भयंकर राक्षस था, अपनी भवों को जब ऊपर करता था ना तो देवता लोग कांपते थे उधर, जहां जहां बैठे वहां पर। तो ये अभी उनको घूर के देख रहा है तो एकदम लटपट कांपने लगे, महाराज महाराज हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें से उसको कुछ नहीं सिखाया है, पता नहीं हमारे शत्रु के लोग यहाँ पर उसको छुप छुप कर आकर, जब हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं तो कुछ सिखाते होंगे, हम जांच करेंगे कि गुप्त अवस्था में कौन आ रहा है यहाँ पर, इसका मन भ्रष्ट कर रहा है, हमारे बालक को देवताओं की विद्या सिखा रहा है। एक बार मौका दो, एक बार प्लीज जाओ, लास्ट चांस है आपके लिए। तीसरी बार जाके बालक को बहुत डांटा उन्होंने, बहुत उतना हाउ टीचर्स आर फायरिंग स्टूडेंट्स, ऐसा बहुत उनको शब्दों से डांटा उनको बहुत। फिर पढ़ाया। इस बीच अपने घर में गए चंडामर का कभी कुछ काम करने के लिए, तो बीच के समय पर सभी राक्षसों के बालकों को इकट्ठा किया उसने, जो ना को स्टूडेंट्स क्लासमेट्स। बोला अभी आपको रिसेस है, टाइम पास नहीं करना है, सब लोग भगवान विष्णु का भजन करो, कौमारम आचरित प्रज्ञस, यही उम्र है भगवान के भजन करने की, बुढ़ापा के बाद कोई भजन नहीं कर सकता भगवान का। जब बालक होता है बहुत कोमल लवचिक फ्लेक्सिबल होता है सब पर्सनालिटी, तब भगवान के भजन सीखेंगे तो जीवन के अंत तक काम आएगा। जीवन के अंत में कोई नई कला नहीं सीख सकते, और भौतिक दुनिया के आनंदों को लेकर कोई खुश नहीं हो सकता है। जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा, जब तक विष्णु के चरणों की भक्ति नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो जीवन की परिपूर्णता प्राप्त नहीं करेगा। हे बालक हो, हे मित्रों, समय गंवाना छोड़ दो, ये खेल खेलना छोड़ दो, सब भगवान के भजन में लगो, अभी हम मिलकर कीर्तन करेंगे। तो राक्षसों के गुरुकुल के अंदर, शंड अमर्क के पाठशाला के अंदर हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना निर्भय था प्रहलाद, राक्षसों के साम्राज्य के अंदर 14 भुवन में उनका राज्य चल रहा है, उनकी गवर्नमेंट है, कोई देवता का कोई नामो निशान नहीं है, देवताओं के घर में पैदा, राक्षसों के घर में पैदा हुआ है, उनकी पाठशाला में शुक्राचार्य की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसमें क्या हिम्मत, उसके बीच के समय पर उनको देवताओं का विद्या सिखा रहा है और कीर्तन करा के ले रहा है, और सब देवताओं राक्षसों के जो बालक है हाथ पर उठा के कीर्तन करके नाच रहे हैं। तब शंडर उमर का वहां पर आते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और कीर्तन को बंद करवाते हैं, और इसको लेकर जाते हैं हिरण्यकश्यप के पास। महाराज इस बालक को हम नहीं सिखा सकते, हमने सोचा कि हम इसको कुछ ब्रेन वॉश करेंगे, कुछ पढ़ाएंगे उसको राक्षस की विद्या, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही बिगड़ा हुआ बालक है, ये तुम्हारे कुल का नाशक है, राक्षसों के कुल पर एक क्या कहते कलंक है ये, लो उसको जो करना है करो, हम नहीं कर सकते। तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया, बहुत ही क्रोधित हो गया, लाल लाल आंखें हो गई उसकी। फिर वो पूछता है ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मेरे गुरु से सीखा, नारद मुनि मेरे गुरु हैं। और इतना निर्भय था बालक, वो कह रहा है कि तुमको भय नहीं होता किस चीज का, ना मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरे शत्रु की पूजा करता है, हाँ मैं विष्णु का भक्त हूँ, और पापा मैं आपसे भी कहता हूँ कि आपका भला भी उसी में है कि आप उसी की पूजा करें। ये सब राजपाट भोग सब त्याग करके आप जंगल में जाकर वृंदावन में जाकर उनका भजन करना चाहिए। तो इनको इतना गुस्सा आया कि इतनी हिम्मत मुझे उपदेश करने की, हाँ इतना बड़ा पावरफुल आदमी है हिरण्यकशिपु, भवे उठाने पर देवता कांपते हैं इंद्र जैसे, नौकर बना के रखा है देवता जैसे इंद्र जैसे देवताओं को, और ऐसे बड़े व्यक्ति को उसका 5 साल का बालक उसके नहीं सुन रहा है। सबसे बड़ा दुख यही था। आज हमारे प्रभु जी मॉर्निंग प्रेयर बता रहे थे, इतना सारा ऐश्वर्य धन सिद्धि वरदान इतना विजय सब होने के बाद भी उसका ही गर्भ से निकला हुआ उसका ही बालक उसकी बात नहीं मान रहा है और उसका शत्रु का पूजन कर रहा है, उसके शत्रु का भगवान मान के पूजन कर रहा है। व्हाट अ बिग डिफीट, हाँ स्मॉल चाइल्ड, जाओ उसको ले जाओ मार डालो उसको, जिस प्रकार से इसको मार सकते हैं मारो, शस्त्र से मारो अस्त्र से मारो, हाथी के पांव के तले दो, विष पिला दो, विषैले नाक की पिट के अंदर डाल दो उसको, पहाड़ से फेंक दो समुद्र में डालो, आग में जला दो, जो भी लगता है जैसा भी मरेगा वैसे मारो, बट मुझे जिंदा नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि जब शरीर में कैंसर होता है तो उस कैंसर को समय पर निकाल काट कर निकाल के फेंक देना ही शरीर के हित के लिए उचित होता है, और ये प्रहलाद जो है हमारे राक्षस वंश पे लगा हुआ कैंसर है, मतलब कर करो इसको समय पर अगर हम नहीं नष्ट करेंगे तो राक्षस को नष्ट हो जाएगा, इसलिए जाओ इस बालक को नष्ट कर दो। कैसा पिता है देखो, अपने ही बालक को मारने का ऑर्डर दे रहे हैं। तो सब प्रयास किया, सब प्रकार से प्रयास किया उनको मारने का, हाथी के पांव को, हाथी को शराब पिलाकर उसके पांव में देने का प्रयास किया तो वो हाथी ने पांव रखा नहीं उसके ऊपर, विषैले सांप से भरे हुए गड्ढे के अंदर उसको फेंक दिया तो एक भी नाग ने और सांप ने उसको डसा ही नहीं, विष पिलाया तो विष का उस पर असर ही नहीं हुआ, शस्त्र कोई चला ही नहीं उसके ऊपर, या भाला लो तलवार लो क्या क्या लो कुछ भी किस अंकुश ले लो किसी का कुछ परिणाम नहीं हुआ। फिर पहाड़ से फेंक दिया तो स्वयं विष्णु ने उसको झेल लिया, फूलों की तरह नदी में फेंक दिया समुद्र में फेंक दिया। भाद ने बोला कि अरे हिरण्यकश्यप की एक बहन है उसको वरदान प्राप्त हुआ है कि वो जब भी उसको जलाया जाएगा तो आग उस पर परिणाम नहीं करेगी, कभी भी अग्नि उसको जला नहीं सकती ऐसा वरदान था उसको। तो उसको बोला कि ये इसको गोद में लेके तो अग्नि लगा देना तो तू बच जाएगी और ये जल जाएगा। तो ये अपने गोदी में लेके बैठ गए उसको और आग लगा दिया पूरा, इसको पूरा विश्वास था कि मैंने वरदान प्राप्त कर लिया है मुझे आग नहीं जला सकती तो बालक जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तो जो आग लगाई चारों ओर से तो यही त्राहिमाम करने लगी जलने लगी, और प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते रहे, वो जलती गई चिल्लाने लगी ब्रह्मा जी महाराज आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं आग से जलूंगी नहीं तो मैं कैसे जल रही हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो मैंने वरदान दिया था कि जब तुम खुद संकट में आकर जलने लगोगी तब खुद को बचाने के लिए तुमको मैंने वरदान दिया था, किसी को मारने के लिए नहीं दिया था। तुम अभी संकट में खुद नहीं जल रही हो, खुद आग लगाकर किसी को जलाने का प्रयास कर रही हो अपने वरदान का दुरुपयोग करते हुए, इसलिए तुम्हें जलना ही होगा। इसलिए वो सबके आंखों के सामने जल गई और प्रहलाद जी आराम से उससे आग से निकलकर चले गए बाहर। हर प्रकार से मारने का प्रयास किया, राक्षस लोग हाथ जोड़कर विनती करने लगे प्रहलाद मर जाओ, अगर तुम नहीं मरोगे तो हमें मार दिया जाएगा। बोला कैसे मरूं? आपको फुल परमिशन है मेरी, जो करना है कर सकते हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी प्रहलाद नहीं मर सका। इसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है, हाँ इतना बड़ा पावरफुल हिरण्यकशिपु अपने सिद्धियां शस्त्र अस्त्र शक्ति के साथ में सब देवताओं को 14 भुवनों को उसने पदाक्रांत कर लिया था, वो एक बालक को नहीं मार सका, वो वीर योद्धा भी नहीं था सिद्ध भी नहीं था कुछ भी नहीं था। तो उसको वापस ला के लेके आए, महाराज क्या करें इसका कि मरता ही नहीं। तो कितना फ्रस्ट्रेट हो गया था हिरण्यकश्यप, हाँ नशा करके जुआ खेल के बीमार व्यभिचार सब कुछ करने के बाद में उसको ये समाधान नहीं मिल रहा था कि इसको मारूं कैसे मैं। तो फिर एकदम फ्रस्ट्रेट होके पूछता है कि तुम्हें शक्ति कहां से प्राप्त होती इतनी? तो शांत रूप से प्रहलाद जवाब देता है, जो सब विश्व को शक्ति देते हैं, जो तुम्हें शक्ति देते हैं, वो उसके तरफ से ही मुझे शक्ति प्राप्त होती है। बोला कौन है वो? तो विष्णु, मेरे भगवान। अरे फिर विष्णु का नाम लिया तुमने, वो मेरा शत्रु है। तो फिर उसको एकदम इतना क्रोध आया, बोला किधर है तुम्हारा विष्णु? तो शांत जवाब दिया, वो तो चराचर में समाये हुए हैं। चर यानी अचर, यानी चर यानी चलने वाले हम जैसे, अचर यानी जो नहीं चलते, पर्वत है जैसे, पेड़ है, ये सबके बीच में समाये हुए, वो कण कण में समाये हुए हैं, दो कण के बीच में भी है वो, इतने वो सर्वव्याप्त हैं। फिर उनको और गुस्सा आया, अरे इतना वर्णन करते जा रहा है, मतलब इसे तो देख रहा है कहाँ पर है वो, बोल इधर देखा तो खम्भा मिला, इस खम्भे में है क्या? हाँ इस खम्भे में भी है, जब मैं कह रहा हूँ सब जगह पे है तो खम्भे में भी है वो, तो अभी तुमको दिखाता हूँ। उस खम्भे को मैं एक मुक्का मार के चकनाचूर कर दूंगा, और अगर उसके अंदर भगवान तुम्हारे मिलेंगे तो उसको भी चकनाचूर कर दूंगा। ऐसा करके कहा, तलवार लिया एक बाएं हाथ से, उस खम्भे का जब मुक्का मारा तो ऐसा भयंकर आवाज आया जो खम्भे के टूटने पर होने पर नहीं आता है, कोई भयंकर ही आवाज आया। हाँ ये अपने को होता ना उम्मीद, अभी खम्भा तोड़ दिया तो कैसा आवाज आएगा, वो उम्मीद से कहीं बढ़कर आवाज आया। और मैं आपको बताता हूँ आवाज के बाद क्या क्या हुआ, वो आवाज सुनने से क्या हुआ, ध्यान से सुनो। ऐसा ही होता है, बहुत नोट बनाएंगे तो भी नोट का मिलता नहीं, किधर गया वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाँ जय श्री राधे। वो आवाज जो है, उस आवाज ब्रह्मालोक तक पहुंच गई, ब्रह्मालोक के बाद में ब्रह्मांड के आवरण को क्रॉस करके वैकुंठ में चली गई। उस आवाज से सब लोग, देवता लोग भयभीत हो गए कि भाई प्रलय काल तो नहीं आया। हाथी जो है ना, हाथी वो रोने लगे और गुफा में से सिंह और बाघ और ऐसे भयंकर प्राणी जो है डर के मारे भाग गए, रोते रोते चिल्लाते हुए, इतनी भयंकर आवाज आई। सारे भुवनों के आवरणों को पार करते हुए निकल गई, वो सबके मन में भय उत्पन्न किया। हिरण्यकश्यप एक क्षण के लिए पीछे हट गया, बोला अरे बाप रे ये कौन है? गौर से दिखने लगा कौन है ये व्यक्ति, ये तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए योनि में से दिखता नहीं है, क्योंकि वो हाफ मैन हाफ लायन, आधे सिंह और आधे मनुष्य थे वो, बहुत भयंकर शरीर था उनका। और फिर आगे क्या हुआ, उनके नाक से जो हवा आ रही थी उससे समुद्र जो है वो क्या कहते हैं उसको, एजिटेट हो रहा था, मतलब उसके पानी जो है वो तूफान की तरह घूम रहा था, इतना हवा उनके श्वासों के चल रही थी। जब उन्होंने अपने गर्दन हिलाए, जब आप देखते हैं ना जानवर कभी भी ऐसे गुस्सा में आता तो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाता है जोर जोर से, तो गर्दन हिलाए तो सिंह के ऊपर जो बाल थे उस बालों से सारे बादल जो है वो तितर बितर हो गए। और अवकाश में उस समय आप जानते हैं एयरप्लेन्स भी हुआ करते थे, वो देवलोक से पृथ्वी लोक पर भी कई विमान आया करते थे। वो जैसे ही भगवान ने खंभे में से अवतार लिया और हमने सर हिला दिया, तो वो सर के प्रभाव से और फटके से कई विमान, हजारों करोड़ों विमान जो है पृथ्वी की कक्षा के बाहर चले गए। दे वर थ्रोन आउट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इसके बाद में जब हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए खंभे से प्रकट हुए भगवान बाहर निकले, तो उनके पैर के भार से जो है वो धरणी कंप हो गया, धरणी अपने कक्षा से स्खलित हो गई, शी लॉस्ट हर पोजीशन इन द ऑर्बिट। और जहां पर कदम रखा वहां पर गड्ढे निर्माण हुए, और उसके प्रभाव से कई जगह पर पर्वत उत्पन्न हो गए बाय प्रेशर, कई जगह माउंटेन्स में पर्वत उत्पन्न हो गए। और तब भगवान को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसके अपने बल पर इतना गर्व था उसको कि समझ में नहीं आया कि मैंने क्या क्या वरदान मांगा था और ये तो उसके बाहर दिखता है, ये योनि भगवान ने ब्रह्मा ने कभी बनाए नहीं है, हाफ मैन हाफ लायन। फिर भी उसको अपने बल पर बहुत गर्व था, इसने सरवाल उठा के भगवान पर आक्रमण किया। वो कुछ दोपहर का समय था आज के दिन, हाँ आज कौन सा दिन है, चतुर्दशी का दिन है, वैशाख शुद्ध चतुर्दशी का दिन है आज। तो इस दिन दोपहर के समय उनका जन्म हुआ और उसके बाद में मैंने आपको वर्णन किया ना पहले, वो उग्र नरसिंह का इतना भयंकर स्वरूप था उनका, उसका भी वर्णन आपको सुनाता हूँ, वो जरूरी है आज के दिन सुनने के लिए। उनकी आंखें कोयले की तरह लाल थी, उनकी जो आयाल थी ना सिंह की आयाल, वो ऐसे प्रकाशमान थी, सब जगह पर फैली हुई थी और बादलों को और विमानों को फेंक रही थी। उनके दांत बहुत भयंकर दिखाई पड़ रहे थे, उनकी जिह्वा उनके मुंह में जैसे कि गुफा में कोई होता ना ऐसे दिखाई पड़ रही थी, बड़े मुंह जैसी गुफा जैसा उनका मुंह था, उसके अंदर लंबी उनकी जबान थी लाल रंग की और तड़पते हुए तलवार की तरह वो हिल रही थी, तलवार की तरह प्रकाशमान। और उनके कान जो है एकदम स्थिर और स्ट्रेट हो गए, जैसे सिंह जब भी अपने सावज पर आक्रमण करता है ना उसके कान पहले खड़े हो जाते हैं स्ट्रेट एकदम। उसके बाद में उनके नाक और मुंह जो है बड़ी बड़ी गुफाओं की तरह दिख रहा था, उनका गर्दन बहुत स्टिफ था, थिक एंड स्टाउट, और चेस्ट उनकी बहुत बड़ी थी, और ऐसे चिल्ला रहे थे, गर्जना कर रहे थे, दोनों हाथ के नाखून ऐसे मानो हजारों सूर्यों की तरह प्रकाशमान थे, और उसके साथ उन्होंने युद्ध करना शुरू किया। तो कई घंटों तक युद्ध हुआ, सब देवता लोग इकट्ठा हो गए भगवान का ये अद्भुत रूप देखने के लिए, और वो संकट का निवारण करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी क्या होगा, अभी फाइनल मैच में क्या होगा, इनको सबको टेंशन था कि यो भी इतना भयंकर राक्षस था और भगवान भी इतने भयंकर क्रोध के अंदर गर्जना कर रहे हैं, उनको गर्जना सुनकर हृदय में थरकाप हो रहा था। उनका युद्ध आरंभ हुआ तो युद्ध में पलड़ा किसी का भारी, कभी इसका भारी, कभी उनका भारी, कभी इनका भारी, कभी उनका भारी, तो देवता लोग बादलों के पीछे छुपकर देख रहे थे। ये समझो बाय द वे, ये पूरी श्रद्धा नहीं होने का लक्षण है कि हमारे भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उनको पूरी श्रद्धा नहीं थी। वो हिरण्यकश्यप से इतने भयभीत हुए थे कि वो बादल के पीछे छुपकर युद्ध देख रहे थे। क्यों? समझो अगर हिरण्यकश्यप जीत गया और भगवान को मार दिया उसने, और अगर युद्ध करते हुए हिरण्यकश्यप ने हमको देख लिया, हम लोग मजा देख रहे हैं ऊपर से, तो पहला हमको उनको मारने का, हमको आके मारेंगे। इसलिए अगर भगवान विजयी हुए तो ही बादल से बाहर आएंगे हम लोग, ऐसा उनका प्लान है। सभी देवता लोग इतने बड़े बड़े वीर हिरण्यकश्यप के भय से बादल के पीछे छुप छुप के मैच देख रहे थे, क्योंकि कभी कभी हिरण्यकश्यप का वजन भारी लग रहा था, कभी भगवान का भारी, भगवान जानबूझ के उसको जैसे कोई बिल्ली एक छोटे से गेंद के साथ खेलते ना वैसे उसको खिला रहे थे भगवान। और करते 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 बहुत घंटे गए, फिर उसके बाद में वो समय आया जो ना दिन था ना रात था। ये सब कुछ कहाँ हो रहा था? हिरण्यकश्यप के दरबार के अंदर हो रहा था, दरबार के अंदर के खंभे के अंदर से ही वो प्रकट हुए थे। सब लोग देख रहे हैं, सबके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, छाती की धड़कन बढ़ रही है, पसीने आ रहे हैं, लग रहा नहीं क्या होने वाला है। तो अचानक इतने पहाड़ जैसे ही ऊंचे हिरण्यकश्यप को भगवान ने ऐसे उठा लिया, जैसे कोई बालक को उठाते ना आसानी से, ऐसे उठा के ले गए और दहलीज पे जाके बैठ गए, मतलब ना घर में ना बाहर में, ऐसे बीच में जाके खड़े हो गए, बैठे नहीं, एक पैर को दूसरे पैर पर मोड़ लिया और एक ऐसा अपना आसन बना लिया, उस पर उसको रखा आसन के ऊपर, दो हाथ से उसको पकड़ के रखा फिट, दो हाथ से उसका नाखून के द्वारा पेट को फाड़ दिया और दूसरे दो हाथ द्वारा उसके अंदर से आते उसकी बाहर निकाली फाड़ गई, और वो माला के तरह गले में पहनी और ऐसे कहा है आप बोलेंगे ई कितना गंदा ब्लड और फ्लैश। लेकिन भागवत जी में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान का सौंदर्य इतना बढ़ गया उसके अंदर, सब जगह बालों पर उनके आयाल के ऊपर खून लगा हुआ था, जो जो सांसें चल रही थी समुद्र प्रकोपित हो रहे थे, हाँ भूकंप हो रहा था, पहाड़ टूट रहे थे, पूरे विश्व में हाहाकार हो रहा था इसके युद्ध की वजह से। तो उसमें बीच पे रखा तो क्या कितने हाथ थे उनके? आठ हाथ थे, दो हाथ पकड़ के रखे थे, दो हाथ से पूरा फाड़ दिया, दो हाथ से पूरा माला बना दिया, एक हाथ दो हाथ में कमल और वो था। हिरण्यकश्यप का पेट जो है कंप्लीटली फाड़ दिया उन्होंने, उसके बाद में भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, उन्होंने उनके छाती में हाथ डालकर जैसा हम फल तोड़ते हैं वैसे उसका हाथ तोड़ के फेंक दिया ऐसा, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। ऐसे ही अपने आधे खड़े एक पांव के ऊपर उन्होंने आसन बना के उसको रखा है, वैसे उसको फेंक देते हैं उसको, जैसे फेंक देते हैं सारी हिरण्यकश्यप की सेना जो है राक्षसों की भगवान पर आक्रमण करते हैं। भगवान कुछ ही क्षणों में सभी लोगों को मार डालते, जितने भी राक्षस थे, जितने भी आक्रमण करने को आए, सबको भगवान ने मार डाला, केवल नाखून की वजह से मार डाला उन्हें। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, फिर भी वो जोर जोर से सांस ले रहे थे और गर्जना कर रहे थे और आंखें लाल लाल थी। और फिर उसके बाद में वो हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर आकर बैठ गए और वहां पर भी गर्जना कर रहे हैं जोर जोर से। आप सोच सकते हैं कितना क्रोध था भगवान को, एक ही कारण से था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने उनके भक्त का अपराध किया था। इतनी देर तक उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसका, लेकिन जब प्रहलाद जी का अपराध किया तो फिर उन्हें उतार लिया। और भक्त कितना प्यारा है उनको, पिताजी पूछ रहे हैं किधर है तुम्हारा विष्णु, इस खंभे में है क्या? उन्होंने कहा इस खंभे में भी है। वो इशारा करते ही तत्क्षण भगवान खंभे में प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि 7 दिन से मेकअप कर रहे थे अपना घर पे, तुम्हें जाना है भाई हाफ मैन हाफ लाइन लेके, हाँ धोती पहनना है सब, भाई तलवार किधर है, भाई मेरी ढाल किधर है, अरे सेब किधर है, चक्र किधर है, अरे जल्दी लेके आओ, जाने का समय हो रहा है, अभी टाइम खत्म है, अभी इतना लंबा सफर भी करना है। ऐसा कुछ नहीं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वो उन्होंने उंगली दिखाते ही तत्क्षण पूरे श्रृंगार के साथ में 8 भुजा वाले शस्त्र धारण करके भगवान खंभे में प्रकट हुए थे ऑलरेडी, केवल उसका स्पर्श करने की देर थी हिरण्यकशिपु द्वारा, तत्क्षण प्रकट हो गए। इसलिए नरसिंह भगवान को इमरजेंसी गॉड कहते हैं। कभी भी आपके लाइफ में इमरजेंसी आएगी ना और आपको ऑन द स्पॉट सहायता की जरूरत है, आप बिना भूले अभ्यास करो अभी और नरसिंह भगवान को पुकारो। केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपको तभी याद कैसे आएगा, आप मम्मी को याद करोगे या पापा को याद करोगे या किसी को याद करोगे, कोई चीज आपको ऐसे ही याद आएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हे नरसिंह भगवान बचाओ, तो आपको अद्भुत अनुभव मिलेंगे। अगर आपको श्रद्धा होगी तो, देवताओं के अंदर पूरी श्रद्धा नहीं थी, वो छुप छुप के देख रहे थे, प्रहलाद जी सामने खड़े को देख रहे थे, वो ये सोच रहे थे अरे मेरे भगवान को अगर इसने मार दिया तो बाद में मेरा क्या होगा, मैं भी छुपता हूँ खंभे के पीछे जाके। वो खड़े है सामने शांत चित्त से ये युद्ध देख रहे हैं, कि उनको विश्वास था कि मेरे भगवान तो जीतने ही वाले हैं, इसका नाश तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए एक भक्त जो होता है वो 33 करोड़ देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि श्रद्धा उसकी श्रेष्ठ होती है और उसको किसी का डर नहीं होता है। अगर वो डर गया होता तो अपने पाठशाला में अपने राक्षसी भाइयों को वो विष्णु की विद्या नहीं पढ़ाता वो, लेकिन वो निर्भय था, उसको विश्वास था कि इसी में इनका कल्याण है, इसी में मेरा पिताजी का भी कल्याण है। इसलिए उसको इतनी हिम्मत थी कि वो इतने भयंकर राक्षस पिता को भी वो बोल रहा था पिताजी आप मूर्ख हो, आपको इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए, आप विष्णु को भक्ति करना चाहिए, आपको वन में जाकर त्याग करके उनकी भक्ति करनी चाहिए। और जो श्लोक हम लोग गाते हैं ना मंदिर में पाठ करते हैं उसको, श्रवणम कीर्तनम विष्णु तत्साधु मन्ये सर्वर्य देहिनाम, हम लोग उसको याद करके उसका मीनिंग बाय हार्ट करने का प्रयास करते हैं, वो एकदम बिनधास अपने पिताजी को सुना रहा था, वो अंजाम को ना देखते हुए कि मुझे मारेंगे ये, वध कर देंगे मेरा, हाँ ढकेल दिया उसने अपने गोद से उसको, इतने ऊंचे आसन से नीचे गिर गया प्रहलाद, फिर भी वो खड़ा हो गया निश्चिंत होकर। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, और एक बालक होकर भी इतने भयंकर सिद्धि वाले पिताजी के सामने वो निर्भय होकर खड़ा था, यही भक्ति का शक्ति है। उस भक्ति के शक्ति के सामने सारे उसके वरदान फेल हो गए, सारी सिद्धियां फेल हो गई, सारा बल फेल हो गया, सारा पादाक्रंत किया हुआ इतना राज्य था वो भी सब फेल हो गया, और एक बालक के सामने उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, यही भक्ति का प्रभाव है। तो फिर ब्रह्मा जी सब देवता लोग, अभी मर गया ना हिरण्यकशिपु, सबको हिम्मत आ गई, सब आकाश से लेके फिर जमीन पर आ गए तब तक आकाश में थे, तब देखा कि नेचुरली वो देखा पल्स देखा बीपी देखा सब फ्लैट, ECG भी स्ट्रेट लाइन हो गया, अभी मर गया कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट भी बाहर पड़ा हुआ है तो अभी कैसा उसका ECG निकालेंगे ऐसा चित्र विचित्र अवस्था में उसको गिराया, तभी विश्वास हो गया उनका कि अभी ये मर गया, तभी उनकी हिम्मत हुई पृथ्वी पर आने की। तब पृथ्वी पर आए और देख रहे हैं तो भगवान अभी भी गर्जना कर रहे हैं, कैसे उनको अभी जाके शांत करें, सब लोग देख रहे हैं ब्रह्मा जी की ओर, ब्रह्मा जी वो देख रहे हैं सबकी ओर कि कौन जाएगा, हमारा प्रतिनिधि बनके कौन जाएगा उनके पास, भगवान अभी शांत हो जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही, सब देवता लोग पीछे हट रहे हैं। तो सबने सोचा कि अच्छा है उनकी पत्नी जो है भगवान की लक्ष्मी देवी, वो तो मालूम है ना आपको स्त्री शक्ति का प्रभाव, तो वो भी जानते थे कि भाई पत्नी जाएंगे तो शायद शांत हो जाएंगे। तो उनको कहा लक्ष्मी देवी आप इनकी अर्धांगना है, आप जाइए जरा इनको शांत कीजिए। तो वो कहते कि मैं इनको पहचानती नहीं हूँ, आई डोंट नो हिम, मैंने इनको इस अवस्था में कभी देखा नहीं आज तक। हमेशा वैकुंठ में इतने शांत रहते हैं, प्रेम करते हैं, इतना मीठा मीठा भाषण करते हैं, इतने प्रेमी भगवान, आज पता नहीं क्या हो गया उनको। आई कैन नॉट गो, मैं जा सकती नहीं उनके सामने। तो फिर इतने बड़े बड़े दिग्गज देवताओं के सामने ब्रह्मा जी उनके नेतृत्व में खड़े हैं, वो जाकर प्रहलाद जी को हाथ जोड़ते हैं, हे प्रहलाद अभी तुम्हारे हाथ में बाजी है, अभी तुम ही कुछ कर सकते हो। प्रहलाद जी बिना भय के माला लेकर गए उनके, और उन्होंने माला पहनाया भगवान को। जैसे ही माला पहनाया सारा भगवान का क्रोध शांत हो गया एक ही झटके के अंदर। फिर गोद में लिया उसको, बहुत प्यार किया, एक सिंह जैसे अपने बालक को चाट चाट कर प्रेम करता है वैसे पूरे शरीर को चाटा भगवान ने अपने जिह्वा से। वही जिह्वा जो तलवार के समान भय उत्पन्न कर रही थी, वो जिह्वा से भगवान ने बड़े प्रेम से अपने भक्त को चाटा। फिर प्रहलाद ने बहुत श्लोक सुनाए उनको, हाँ प्रार्थना के रूप में। वो कहते हैं हरे कृष्णा कि मैं आपके इस भयंकर जिह्वा को देखकर डरता नहीं हूं, मैं आपकी भयंकर आंखों को देखकर डरता नहीं हूं, आपके भवे जो देवताओं को डराती है उसको देखकर मुझे भय लगता नहीं है, आपके जो तीक्ष्ण दांत हैं उसको देखकर मुझे डरने लगता है, आपकी जो माला पहन कर रखी है हाथों की इंटेस्टाइन्स की उसको देखकर मुझे कुछ नहीं लग रहा है, आपके बालों पर सब खून लगा हुआ है, आपके खड़े हुए कान हैं, आपके तीक्ष्ण नाक हैं, अपने ये नाखून हैं जिससे आपने इतने भयंकर राक्षस का पेट फाड़ कर उसको मार दिया, और आप इतने भयंकर गर्जना कर रहे हैं, इनमें से किसी भी वस्तु की मुझे डरने लग रहा है, लेकिन मुझे इस भौतिक दुनिया में जीवन का डर लगता है जो जन्म मृत्यु से भरा हुआ है, तीन प्रकार के तापों से भरा हुआ है। ऐसे मटेरियल लाइफ भौतिक जीवन जो बद्ध जीवन है उसकी बद्धता को लेकर मुझे डर लगता है, और दूसरी बात मुझे संतों का संग नहीं मिल रहा है इसलिए मैं दुखी हूं। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान लंबी प्रार्थना उनकी, बहुत लंबी प्रार्थना उन्होंने भगवान की लिखी है। तो भगवान ने कहा कि हमको आपको वरदान देना है, मांगो बस मांगो, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया है। तो भगवान कहते हैं कि, प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, व्यापारी हमेशा अपने काम का कुछ लाभ चाहता है, फल चाहता है, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैंने आपकी सेवा किया है, वो सेवा मैंने निष्प्रिय मन से किया है, इसलिए मुझे उस सेवा के प्रति कुछ लाभ नहीं चाहिए। फिर भगवान जिद करते, नहीं आपको देना है, लेकिन आपको देना ही है तो मेरे मन में कभी आपको छोड़कर कोई भौतिक इच्छा उत्पन्न ना हो, ये वरदान मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में आपको छोड़कर कोई इच्छा ही उत्पन्न ना हो। नंबर टू, मैं कुसंगति से बहुत डरता हूँ, मुझे हमेशा वरदान दीजिए कि मैं साधु के संग में रहूँ, आपके भक्तों के संग में रहूँ। फिर कहते हैं अब मुझे याद आया, एक मुझे मांगना है आपसे, वो ये है कि मेरे पिताजी जो है इतने पापी हैं, इतना पाप किया, इतना आतंक मचा दिया था, इसके नाम पे इतने पाप है भयंकर, पता नहीं इस पापों का फल भोगने के लिए कितने जन्मों तक उसको दुख भोगना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप पाप मुक्त कर दो, माफ कर दो इसको। तो भगवान एक ऐतिहासिक वाक्य बोलते हैं, भगवान कहते हैं प्रहलाद तुझ जैसा अगर भक्त कोई है मेरा तो उसको पिता क्या, उसके पीछे की 10 पीढ़ियां, उसके आगे की 10 पीढ़ियां, 21 पीढ़ियों का उद्धार ऑलरेडी हो चुका है तुम्हारा। प्रहलाद सिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, एक तुम्हारे जैसा शुद्ध भक्त किसी घर में है, कुल दीपक किसको कहते हैं, अगर ऐसा कोई भक्त है तो उसके होने से उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसकी पीढ़ी, वो पीछे के 10 और आगे के 10, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम सबको भक्त बनना चाहिए, हम केवल अपना उद्धार नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्धार तो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन हमारे शुद्ध भक्त बनने से हमारी 21 पीढ़ियों को सबको भगवान का भक्त बनने का मौका मिलेगा, और सब लोग पापों के भार से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान का वादा है, कोई ऐसा दूसरा आदमी आके नहीं बोल रहा है, भगवान स्वयं अपने मुख से वादा कर रहे हैं। और फिर प्रहलाद ने ये ऐसे बहुत सुंदर वरदान मांगे, अगर हमको किसी को मांग लिया होता हमने कितनी भौतिक चीजें मांग ली होती, हाँ, लेकिन उसने कहा कि मैं व्यापारी नहीं हूँ, मतलब हमें भी अपनी भक्ति व्यापारी बनकर नहीं करना चाहिए कि मैं हरिनाम जप करूँगा तो मेरा प्रमोशन होगा, मेरा पगार बढ़ेगा, मेरे घर में गाड़ी आ जाएगी, और अभी गरीब था तो अमीर हो जाऊँगा, और अभी लोन था लोन खत्म हो जाएगा, बड़ा घर होगा। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, क्या प्रभु जी इतने साल से जप कर रहे हैं, कुछ लाइफ में कुछ दुख खत्म नहीं हो रहे, ना प्रमोशन हो रहा है, ना पगार बढ़ रहा है, ना कोई सुख आ रहा है, दुखी दुख, कोई दुख खत्म नहीं होता नजर आता है, ना कोई सुख आता हुआ नजर आता है, तो क्या फायदा है भगवान के भक्ति करने का, सब बेकार है, हम नहीं करेंगे, जब करना बंद कर देंगे। मतलब हम लोग व्यापारी हैं, वैश्यवाणी हैं हम लोग, हाँ, अपने किए हुए भगवान की भक्ति के बदले में कुछ लाभ चाहते हैं, जो इस दुनियादारी का लाभ है, यहीं पर रह के भोगने का लाभ चाहते हैं हम लोग, लेकिन कम जानते हैं हम लोग ये बस बात को कि यहाँ पर मिला हुआ हर लाभ जो है समय के साथ समाप्त होता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मुझे आप ऐसे भौतिक चीजों को देने के लिए लालायित मत करो, डोंट टेम्प्ट मी विद दिस मटेरियल गिफ्ट्स, जो आप देना चाहते हो, ये सारे जो आप देना चाहते हो वो सब चीज समय के साथ नष्ट हो जाती है, इसलिए मुझे ऐसी वस्तुओं में रुचि नहीं है, और आपसे वरदान भी मांगता हूं कि कभी भी रुचि उत्पन्न ना हो ऐसी वस्तुओं में। उन्होंने बड़ा लिस्ट दिया हुआ है, वो कहते हैं कि विद्या, अधिकार, शक्ति, बल, प्रॉपर्टी, राजपद, ये सारे जितने भी गुणों के लिए हम लोग तड़पते रहते हैं, यहां पर मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए, बोले वो सब चीज समय के साथ नष्ट हो जाती है। तो इस पर गर्व करने की कोई बात है नहीं, नो नीड टू बी प्राउड ऑफ दिस थिंग्स। इसलिए आप मुझे केवल भक्तों का संग दो। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हजारों साल जीना होगा, और मेरी आपको आज्ञा है कि मैंने दिए हुए सारे भौतिकताओं को आपको भोगना होगा, यू प्लीज एंजॉय, पर मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि जब भी आप एंजॉय करोगे मैंने दिए हुए संपत्ति का, तब मुझे नहीं भूलोगे, आप हमेशा मेरी याद करते रहोगे, और जीवन के अंत में निश्चित रूप से आप मेरे धाम पे चले जाओगे। ऐसा है ये प्रहलाद, हाँ, निर्भय भक्त है भगवान का, पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, इस बात पर इसके बालक को इतना विश्वास था। तो हमको कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि कैसे भक्ति करेंगे प्रभु जी, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है, हमारे पास तो धन भी नहीं है, हम तो कोई प्रभावी व्यक्ति भी नहीं है, हमको संस्कृत बोलने को नहीं आता, हम ब्राह्मण कुल के भी नहीं है। प्रहलाद को देखो, राक्षस कुल का था वो, ब्राह्मण तो था नहीं, वो प्रतिकूल घर में जन्म हुआ था, कोई संगति नहीं, उसको राक्षस की विद्या दी जा रही है, उसको पढ़ाया जा रहा है उल्टा विद्या पढ़ाई जा रही है, सब प्रकार का विरुद्ध वातावरण था वो, उम्र भी छोटी थी, ऐसा कि नहीं बलवान था, बहुत भयंकर रेसलर था, हाँ शस्त्र विद्या में निपुण हो गया था, तो बालक था अभी भी वो, हर प्रकार की हमारे दृष्टि से जो विपरीत अवस्था है उसमें वो था। विभीषण भी ऐसा ही था, रावण के घर में जन्म हुआ था, उसका भाई था उसका वो। ये सारे भक्त हमको क्या बताते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई भौतिक बाधा नहीं आ सकती, अगर हमारे दिल में विश्वास है उत्साह है तो कोई भौतिक स्थिति आपको रोक नहीं सकती, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग भक्ति ऑफ कृष्णा। तो प्रहलाद का जो हमारे लिए बहुत प्रेरणामय है, एक्चुअली नरसिंह भगवान का आविर्भाव दिवस है, लेकिन एक्चुअली गौरव प्रहलाद जी का ही है कंप्लीट, उनकी वजह से तो आए वो, ओनली फॉर वन डिवोटी फॉर वन डे ही हैज कम। सोच सकते हैं आप, बाकी सारे अवतार बहुत लंबे लंबे, राम जी के हजारों साल, कृष्ण के 125 इयर्स, और बाकी ये अवतार केवल एक दिन के लिए हुआ है, एक भक्त के लिए हुआ है, ओनली फॉर वन डिवोटी, और आज तक हम लाखों करोड़ों साल हो गए सत्ययुग से, अभी भी गा रहे हैं उनके लीलाओं को, क्योंकि भगवान ये बताते हैं हमको कि आप अगर मेरे भक्त हो, आपने अगर मेरे चरणों में मेरा आपका जीवन अर्पण कर दिया है तो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपको हमेशा रक्षा करूंगा, जब आपको सबसे अधिक मेरी जरूरत होगी तब मैं वहां रहूंगा आपके साथ में। ये यकीन दिलाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा लीला किया। मैं सुबह आज ओटी में कह रहा था, अगर उनको इच्छा होती तो वो छोटा सा रूप धारण करके, एक बार वो गए थे ना उत्तरा के गर्भ में, इतना सा अंगुली मात्र रूप धारण करके वो उत्तरा के गर्भ में जाकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का नष्ट किया था और परीक्षित को बचाया था, वैसे छोटा रूप धारण करके वो उसके हार्ट में चले जाते, वहां के आर्टरी को काट देते, तो बाहर से कोई दिखता ही नहीं, कोई घाव नहीं कुछ नहीं, और हिरण्यकश्यप मर जाता, तो फिर इतना बड़ा ड्रामा कैसे होता और हम इतना वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो हम सब भक्तों को आनंद देने के लिए, युग युग तक आनंद देने के लिए भगवान ने इतना विस्तार पूर्वक लीला किया। आधा पुरुष का आधा सिंह का शरीर, खंभे से आना, नाखून से मारना, इतने देर तक लड़ाई करना, फिर जंगा में बिठा कर, दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, पूरा नियम पालन ब्रह्मा जी का करते हुए बहुत गौरवशाली रूप से इतने भयंकर राक्षस को वध कर देना, वो भी कैसे, पेट फाड़ के, हाँ, हार्ट तोड़ के फेंक देना। इतना सनसनीखेज ड्रामा अगर नहीं होता तो हम लोग फिर 1 घंटे 10 मिनट के लिए क्या बोलते तो हमारा संध्या जागृति कार्यक्रम अधिक अच्छी तरह संपन्न हो, इसलिए भगवान ने इतना बड़ा लीला किया। ये कथा ऐसी है कि 7 दिन तक आप 4 घंटे भी सुनोगे ना, विस्तार में बताएंगे तो समाप्त नहीं होगी वो। हमारे राधा गोविंद जी महाराज 7 दिन तक हर रोज 4 घंटे तक कथा करते हैं, 28 आवर्स एक ही कथा है। प्रहलाद नरसिंह, हिरण्य का शुभ प्रहलाद नरसिंह, चंड अमरक, ऐसा इसका महात्म्य है। और इसका पाठ करने पर, इसका श्रवण करने पर सब लोग जन्म मृत्यु की बाधा से मुक्त हो जाएंगे और सबके हृदय में भक्ति का प्रकाश होगा, ऐसा वरदान है इस कथा को श्रवण करने के लिए। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य बार बार लगातार सैकड़ों बार इस कथा को सुनते थे, और हम भी इसको सुनेंगे 1000 बार तो भी आपको बोर नहीं होगा। आपको पता है मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, आप सबको पता है कि खंबे से आने वाले हैं, प्रभु जी ये बोलने वाले हैं। अभी नाटक देखेंगे ना आप, तो बच्चा भी बोलेगा अभी देखा खंबे से बाहर आएगा, अभी देखा वहां से आएगा। सबको पता है, लेकिन फिर भी हर साल हम लोग वो ड्रामा बार बार लगातार देखते हैं, क्योंकि ये दिव्य है, कोई भौतिक फिल्म की स्टोरी नहीं है ये। इसको एक बार दो बार देखेंगे तो बोर हो जाता है, बाद में हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, दूसरा फिल्म लेके आते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है करोड़ों साल तक चल रही है, हिट एकदम, हाँ, गोल्डन जुबली और क्या बोलते हैं उसको, डायमंड जुबली और 100s of jubilees चल रहा है, फेमस ड्रामा। आज तक कोई ड्रामा इतना लंबा नहीं चला है। मंदिर में अलग अलग ट्रूप्स ने, अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से इस ड्रामा को चलाया है, लेकिन कभी भी किसी को बोर नहीं हुआ उसको देख के, क्योंकि हमारे जो भाई है ना, हमने भाई कौन, नरसिंह भगवान, वो हमारे रियल भाई है, बाकी सब भाइयों को वो कचरा कर देते हैं। ही इज़ अवर रियल हीरो, जिसका हम आश्रय लेते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो बोलो नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, संकट मोचन तत्क्षण प्रकट, नरसिंह भगवान की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।